Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Sambhav Steel Tubes Limited Q4 FY26 earnings conference call hosted by Monarch Networth Capital Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Sahil Sanghvi from Monarch Networth Capital Limited. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Darwin. Good evening, everyone, and welcome to the Sambhav Steel Tubes Limited earnings call to discuss Q4 and full year FY26 performance. Before we begin, we would like to remind you that today's discussion may include certain forward-looking statements which should be considered in the light of the risks and uncertainties outlined by the company. Joining us on the call today are Mr. Vikas Kumar Goel, Managing Director and CEO, Ms. Anu Garg, Chief Financial Officer, Mr. Bikash Agarwal, Additional Executive Director, and Mr. Mayank Agarwal, AVP CEO's Office and Investor Relations. We would like to congratulate the management and the whole team at Sambhav for the very impressive set of numbers. I now invite Mr. Vikas Goel to take us through the business outlook and key financial highlights, following which we'll open the floor for questions. Thank you, and over to you, Vikasji.
Thank you, Sahil. Good evening, everyone, and thank you for joining the earnings call, conference call of Sambhav Steel Tubes Limited. I hope you had the opportunity to review our financial results and investor presentation filed with stock exchanges. I will take you through the key strategic updates, operational highlights, and financial performance of the company for the year and quarter ended FY26, followed by a discussion session. I am pleased to share that FY26 has been a landmark year for Sambhav, with a growth of total sales volume by 37%, revenue 60%, EBITDA 79%, and PAT by 147%. Our performance reflects the strength of our integrated business model, disciplined execution capabilities, and the continued focus on operational efficiency and value-added products. Before turning to the financial highlights, let me update you on strategic initiatives and expansion progress. We continue to make steady progress on our capacity expansion plans. As communicated earlier, our greenfield projects at Kesda and Kutehr 2 are progressing as scheduled, the first phase of expansion having 360,000 tons per annum stainless steel capacity remain on track for commissioning in quarter four financial year 2027. Under our brownfield expansion program, we are enhancing capacities in both stainless steel CR coils and ER pipes and tubes to strengthen our value-added product portfolio. We have completed the debottlenecking projects for stainless steel CR coils, which will increase capacity from 58,000 tons per annum to 116,000 tons per annum. We are expecting to receive the consent to operate in this week. We are expanding our ERW and tubes capacity by 150,000 tons per annum through direct forming technology with an estimated CapEx of 50 crores. Upon completion, our total ERW pipes and tubes capacity will increase to 0.5 million tons per annum. Further, we have successfully completed the public hearing of our proposed 30-megawatt captive power plant at Sarora, which has an estimated CapEx of 150 crores. This project is expected to make the Sarora unit self-sufficient in power requirements and improve overall operating efficiencies. Strengthening our stainless steel strategy further, we have signed an MOU with the Ministry of Steel under the PLI Scheme 1.2 for stainless steel CR coils for the manufacturing of thinner gauges coils, catering to higher value applications. We are also pleased to share that we have executed six additional MOUs under the co-branding for stainless steel pipe manufacturing. With this addition, a total of 10 MOUs are now live under this initiative. Further discussions with several other partners are also placed in progress. Coming to yearly operational performance, our product mix continues to evolve towards higher margin, high value-added offering in line with our long-term strategy vision. Sales volume reached all-time high of 396,000 ton, registering growth of 37%. Value-added product volumes increased to 356,000 ton, marking growth of 51%. EBITDA per ton was 7,500 rupees, excluding sponge iron sales. Now moving to yearly performance, to increase by 60% to 2,413 crores. EBITDA increased by 79% to 276 crores, with EBITDA margin remain over 11%. PAT more than doubled to 143 crores, while PAT margin improved from 3.8% to 6%. Delivered ROCE of 16% despite continuous capex. Our cash conversion cycle remains stable at 17 days. Coming to the quarterly performance, the quarter marked our highest ever revenue, EBITDA and PAT performance despite the war-related crisis. Revenue increased by 38% to 685 crores. EBITDA grew by 91% to 92 crores. EBITDA per ton stood at 9,500 excluding sponge iron sales. PAT more than doubled to 56 crores. EBITDA margin improved significantly to 13% and PAT margin improved to 8%. Looking ahead, we remain confident about our long-term growth opportunities for the company. Our ongoing expansion projects, increasing market penetration, strong dealer relationship, strategic focus on value-added product position, as well to capitalize on the growing opportunity in India's steel pipes, tubes and stainless steel sector. With our strategic manufacturing setup, captive power initiatives, expanding distribution network and experienced management team, we believe Sambhav is well positioned to deliver sustainable growth and create long-term value for all stakeholders. As we always say, Sambhav hai, to sab Sambhav hai. Thank you once again for joining us today. We will now open the floor for question and answer.
Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to please use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will now wait for a moment while the question queue assembles. Our first question comes from the line of Miraj from Sameeksha Capital. Please go ahead.
Thanks a lot and congratulations to the entire team for a wonderful set of results. Sir, I have a question regarding the CAPEX plan that we have now. So on the last call, we had discussed that the CAPEX, total CAPEX figure was of approximately 930 crores. Jisme se aapne 200 crores to already kar diya tha. And in this quarter, you've announced another 200 crores worth of CAPEX. Now, in the balance sheet, you have 100 crores worth of non-current investments. And if I just look at the current year's OCF also, you're doing at least 200 crores of OCF. So if you can just break down, my first part is if you can just break down the current total CAPEX plan and how much of it is already completed and how much of that CAPEX plan will be debt funded and how much will be internal accrual funded. That's my first question, sir.
Thank you, Miraj. I would like to explain this way. The CAPEX that we have announced of 930 crore, in the last call we have spent around 200 crore, which is now increased to 300 crore rupees. So balance cost to be incurred is approximately 630 crore rupees. We have planned to take around 675 crore rupees of term loan for the KEDA CAPEX. So further CAPEX will be done from the debt itself. Additional CAPEX that we have announced this quarter is around 200 crore rupees. Both are more or less debottlenecking and operational efficiency CAPEX. Power plant will give me power cost saving of around 60 to 70 crore rupees. And through debottlenecking of our existing rolling mill in Sarora, we will have additional capacity debottlenecking of around 150,000 ton per annum. So with 50 crore of investment in my pipe mill through DFT route, I will be unlocking a value, operating value of around 40 to 50 crore rupees. So these 200 crore rupees will give me an operating boost of around 100 to 120 crore rupees. These 200 crore we have planned to do investments through internal accrual and certain amount of debt. At maximum, we will be taking 150 crore of debt and balance will be through our internal accrual. So this is the two capex that we have announced, and this is the debt and equity metrics of these two capex currently.
Perfect, understood. So, sir, now we have two different captive power plants. So, after the installation of both of these plants, how much of our power would be captive?
In Sarora plant, with this 30 megawatt power plant, we will be 100% self-sufficient. In Kesa, we are doing 25 megawatt of power plant installation, which will have self-sufficient for phase one of my rolling mill, phase one of my Kesda unit. Kutsal, we still have to import certain amount of electricity from the grid, but going forward, we have planned for that to integrate with our power plant system.
Understood. Okay, great. And so my last question, so we've set up a huge target that in the next 4 or 5 years, we want to reach 2 million tons of finished steel capacity. So just wanted to understand your thought process and your internal discussions on how do you plan to maintain certain debt to EBITDA level targets or restrictions, or, you know, when would you decide that you might need some further equity raise, or anything on the debt prudence that you guys have thought of?
Our main purpose of IPO that we have brought is to go financial prudent and reduce our debt. So management as a whole are very prudent on raising debt capital, or debt fueled growth is where we are very much skeptical about. So going forward, we have certain internal metrics upon which we will be raising debt. Let's say we are long-term debt will not be more than 1.5 times of our net worth, or my forward EBITDA my long-term debt should be 1.5 times of my forward EBITDA. So this is the two metrics upon which we are operating. First, secondly, in terms of future growth planning of 2 million ton of finished product, we have a bifurcation of, let's say, 10%, let's say 10 million ton of MS pipe and tubes. 10 lakh ton of MS pipes and tubes, 3 lakh ton of coated product, and approximately 7 lakh ton of stainless steel coil. So this is the composition of our product mix for 2 million ton of 2030 installed capacity that we plan to achieve.
Understood, sir. Got it. Thanks a lot. And
we will have 10 to 12% of MS coil or pipe market, and 10 to 12% of stainless steel flat product or coil market in 2030. So that is what we aspire to achieve.
That's great, sir. Thank you so much for the detailed answer. And we hope to see more detailing on the capex plan we'll discuss in the coming quarters. Thank you so much, sir.
Thank you, Miraj.
Thank you. Participants, to ask a question, you may press star and one. Our next question is from the line of Vinit Thakur from Plus 91 Asset Management Company. Please go ahead.
Hi, sir. Congratulations on great results. Sir, I would like to know what is the capex schedule for next 3 years as we are reaching for the phase two as a phase three as well. Phase one will be complete by FY27, end of FY27, and then when we are planning to announce phase two and phase three.
Thank you, Vinit. So as we said, we wanted to achieve around 2 million ton of finished good product. Along with that, we want to add 2 to 3 new product line in our product portfolio. So current capex figure as a whole is very difficult to quote currently, because phase 2 and phase 3 of Kesda, the product composition is yet to be defined. So in coming quarters, we will be giving you the exact capex figure once phase one is operationalized and certain products get announced in near future.
Sir, could you give me the capex figure for next 2 years? What would be the consolidated capex figure for as of 2 years? without the phase two and phase three expansion? Hello, am I audible, sir?
Currently, we have announced around 934 phase one of Kesda, 200 crore for internal operational efficiency, that is power plant of 30 MW and 150,000 ton of DFT line mill. And we believe in by another, like by FY28, we will have another 300-400 crore of additional CapEx that we may announce. Depends on this particular announced CapEx execution and timeline.
And sir, we've seen a good EBITDA per ton this year, especially Q4. Could you tell me a sustainable EBITDA per tons going forward? And could you explain why the EBITDA per ton was peaked this quarter?
This quarter is more than our expectations, but if the market going on this way, like the HR coil prices as of now, it depends on the HR coil prices and the raw material prices. But we still believe 7,500-8,000 rupees for our Q1 is fairly expected.
So could you explain why the EBITDA per ton was quite high this quarter for us? Like, what was the factor affecting us?
जैसे मैंने last आपको कॉन कॉल में बताया था कि हमारे जो raw material है, this is iron ore and coal. जो अगर हम मैं, जो मेरा third quarter की procurement थी, वो fourth quarter में use हुई, जो बहुत bottom price की थी, मान लीजिए आप. तो जो quarter four में मैंने procure किया है, वो मुझे अभी जो उसका price थोड़ा सा increase हुआ है, मान लीजिए 5-10%, तो वो मेरा अभी use होगा. और Q4 में prices, although अचानक से December में जो enhance हुए HR coil के, क्योंकि जो अब जो abundance था HR coil के production का, वो कहीं ना कहीं consumption में convert हुआ है. तो अब कोई extra capacity नहीं है आज HR coil की, कि market में extra कोई वो उनको discount देना पड़े. तो going forward, मुझे लगता है कि HR coil के price भी ठीक रहेंगे. मुझे finished product में price का improvement मिला, और raw material side पे पुराने माल use हुए, तो वो एक gap रहा, कि वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा margin मिला. लेकिन हो सकता है कि इस quarter में भी और going forward भी अगर HR coil के price retail maintain रहते हैं, क्योंकि raw material के prices तो थोड़ा सा ये जो अभी अपना rainy season के कारण कम भी होते हैं, और अगर finished good के price अगर same रहे, तो हम और अच्छा perform करेंगे. और कुछ rainy season के कारण demand जैसे कम होती है, क्यों quarter two में, three में, तो थोड़ा सा एक फर्क आता है. पर Q1 और Q4 हमेशा ही अच्छा रहता है steel industry का.
Correct, sir.
Overall, अगर कहेंगे तो FY27 में, we can expect EBITDA in the range of 7,000-8,000 on an average side, if the market situation continues to be like this. And our growth, volume growth vis-à-vis 26 is we around 10%-15% is what we are expecting.
Okay, sir. And sir, could you give me a breakup of the realizations for each of the products that you have, or we're still not calculating it, if you do have the numbers?
So currently, see, our system doesn't allow us to calculate because we are fully integrated and all the departments and all the plants are interlinked. So currently, the transfer pricing and all is not happening the way it should have been happening, because so the bifurcation in terms of EBITDA per ton on the product basis.
Realization.
Will be difficult, but in terms of realization, I would say for Q4 2026, black MS pipe, we have achieved around 55,000-60,000, depends on the product and size. GP, we have achieved pricing of around 65,000-75,000, depends on, again, pricing, product and the size range. SS 200 series, we have achieved a pricing of around 120,000-135,000 per ton, 145,000 per ton. For SS 300 series, we have achieved a pricing of around 180,000, realization of around 180,000-190,000 per ton.
Okay, sir. Great.
Current price.
So if you see the current quarter price of black pipe is in the range of 57-60. GP is around 75, currently hovering around, and SS is around 135, and SS 200-300. So SS 200 is 135, and SS 300 is around 200-210. So that is the current price or realization going on in the market.
Sir, if you can give me individual production volumes of the products, if it's possible. If not, then also it's...
For Q4, so I think you can take a reference from there.
Not an issue, sir. And sir, one last question. What would be the peak utilization of MS, SS, GP and ERW, GI pipes? Like, what will be the peak utilization after the debottlenecking up is gone through and the new capacity comes?
So in SS segment, we are going to achieve around 60 to 65% of the utilization because we have announced, we are about to receive a consent to operate for our brownfield expansion by this weekend. So that will have, with that capacity expanded, we will have 60 to 65% of capacity utilization. For MS pipe and coil, 65 to 70. MS pipes and tubes, and for GP, we can achieve around 80 to 90 easily.
And GI pipes, any RW?
So we are not currently working on GI, we are working on GP pipes and GP pipes and tubes, so that utilization we are expecting around 80 to 90%. For ERW, 70, approximately 70, 75 at max, that is the utilization that
right.
we can achieve after
a
DFT comes in line.
Okay. And so, could you sir explain the DFT and the AOD process, like what is the beneficial aspect to it, like if you could explain, sorry.
DFT is a direct forming technology. Aisa koi direct ekdam relation koi benefit nahi hai, lekin jo aapko size change karne se ek benefit mil jata hai ki jaise aaj mujhe koi order mila ek size ka to wo turant जैसे आज जो हमारे पास में साइज चेंज करने के लिए 3 to 4 hours का एक टाइम जाता है तो वो एक उसमें डायरेक्ट फॉर्मिंग में नहीं जाता तो मुझे जो एग्जीक्यूशन करने में बहुत इजी होता है राइट टाइम डिलीवरी में बहुत इजी हो जाता है और प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी एक मशीन से लगभग 10 से 12 हजार टन पर मंथ की बढ़ जाती है तो वो एक बेनिफिट और छोटे साइज में ये बहुत बेनिफिशियल नहीं होता है जैसे हम थोड़े बड़े साइजेस में ही इसको जितने हमारे जो बड़े साइजेस के माल हम बना रहे हैं 4 inches एंड अबव के तो उसमें हम उसको हम डीएफटी में कन्वर्ट करेंगे पूरे को
ओके सर थैंक यू सो मच सर थैंक यू
विनीत
थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन टू आस्क अ क्वेश्चन यू मे प्रेस स्टार एंड वन दैट इज स्टार एंड वन इफ यू विश टू आस्क क्वेश्चंस Our next question is from the line of Mahek Talati from Agility Advisors. Please go ahead.
Yeah, hello sir. Thank you so much for your opportunity. I'm audible.
Yeah.
Sir, just two clarifications. We did not have any inventory gain in this quarter, correct?
Yes.
Okay. And sir, we mentioned that we are increasing our ERW capacity by close to 1.5 million tons. So we would be increasing our backward HR coil, narrow HR coil capacity as well for this DFT plant, right?
No, we are just improving our HR coil manufacturing facility in-house. Just after that transfer to SS manufacturing facility to Kesda, we improved instead of 6,000 ton of SS, we can produce 10,000 of HR coil in-house. So we are planning to convert that material to the pipes, ERW pipes. And little
okay.
bit of the market HR coils.
Okay, understood. And... what would be the peak debt after completing all the capexes?
So currently, the capex that is announced, we are expecting a peak long-term debt of around 800 crore rupees at max and 200 to 300 crore rupees of working capital. So that is what our total debt figure that we are looking at the peak level for the current capex that we have announced.
Okay. And from Q4 on, from Q4 to current, there has been an increase in the utilization across all the product portfolios. So, how much is the pass on to the EBITDA? Is the similar increase in the raw material, or what of the increase in the realizable pass on to our EBITDA?
Can you repeat the question because we miss certain words of your questions.
So there has been an increase in the realization across MS, GP and SS boys, but by close to 2,000 to 3,000 rupees a ton. Now, can we expect this increase in the realization to be slowed down to EBITDA, or there is a similar increase in the raw material prices as well?
So you are saying what is the whatever the price increase in terms of realization, whether it is being 100% passed on to EBITDA level or not. So I think 50 to 60% is actually passed on to the EBITDA level. Rest actually we either passed on through our credit note or we are through giving certain discounts to our. And also raw material cost also, you know, like the zinc has been increased many fold, and certain energy cost also increased in during this wartime, and also cost also being increased along with that. So pass-on percentage is around 50 to 60%.
Okay, so we can expect similar kind of an EBITDA around 8,000 to 8,500 in Q1.
But we are the...
So we would give you a range of 7,500 to 8,000 currently, but if the work persists and if the market anomaly still lies there, we are hoping for the best. But 7,500 to 8,000 looking at current quarter is quite achievable.
Okay, understood. Thank you.
Thank you. Participants, to ask a question, you may press star and one. That is star and one to ask a question, ladies and gentlemen. Our next question comes from the line of Mehul Panjwani from 40 Cents. Please go ahead.
Hello, sir. अभिनंदन आपको ये numbers robust numbers देने के लिए मुझे एक question है slide number 9 पे slide number 9 पे हमने अपनी existing capacity present की है और बाकी post expansion capacity है तो वो post expansion capacity जो है वो सारे products मिलाकर है कैसे है सर थोड़ा इसमें elaborate करेंगे slide को
लास्ट सेंटेंस आप एक बार फिर से बोलेंगे वी मिस दैट लास्ट सेंटेंस
हाँ जो 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 स्लाइड नंबर 9 पे पोस्ट एक्सपेंशन कैपेसिटी है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 2030 में होगी राइट
करेक्ट 2030 का ये
नहीं नहीं क्यों 2030 का चाहे लाइफ रेडियस
है और ये जो एक्सपेंशन कैपेसिटी है 20,32,000
करेक्ट
वो सर सब प्रोडक्ट्स मिलाकर है कैसे है सर थोड़ा
सब
सब अभी हम क्या व्हाट आर द बिकॉज़ आई एम न्यू टू द कंपनी व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग राइट नाउ जस्ट ओनली वन प्रोडक्ट इज इट
सो करेंटली वी आर ऑपरेटिंग इन टू सेगमेंट व्हाट दैट इज कार्बन स्टील सेगमेंट एंड स्टेनलेस स्टील सेगमेंट इन कार्बन स्टील सेगमेंट वी हैव टू प्रोडक्ट्स वन इज ईआरडब्ल्यू पाइप्स एंड ट्यूब्स एंड सेकेंडली जीपी पाइप्स एंड जीपी कॉइल्स एंड जीपी पाइप्स एंड इन स्टेनलेस स्टील वी आर करेंटली मैन्युफैक्चरिंग स्टेनलेस स्टील कॉइल ऑफ 200 एंड 300 सीरीज
राइट तो अभी जो हमारी कैपेसिटी है स्टेनलेस स्टील में 58,000 है या वो भी एक्सपांड कर रहे हैं
वो अभी जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया कि डी बॉटल लेकिंग का एक प्रोसेस हमने अंडरटेक किया था जिसका कंसेंट टू ऑपरेट हमको ये वीक में एक्सपेक्टेड है तो वो
प्लांट हमारा
प्लांट का कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग कम्प्लीटली डन तो वो हमारा 1,16,000 टन हो जाएगा 58 विल बिकम 1,16,000 टन फ्रॉम दिस वीक इटसेल्फ
ओके और ये एसएस का तो अभी हमने अभी कुछ अभी वी आर दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट राइट फॉर जो ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन दिखा है वो पहली बार हम एसएस बना रहे हैं राइट
एसएस का ऑलरेडी हमने 58,000 से चालू किया था फ्रॉम नवंबर 2024 वी आर नाउ ब्राउन वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन टू एच 1,16,000 और जो उसका थोड़ा और लार्ज वर्जन जो कर रहे हैं हम लोग वो केजा यूनिट में 3,60,000 टन का कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं हम लोग जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का बात
अच्छा अच्छा और सर ये इसमें माइलस्टोन्स क्या रहेंगे बिकॉज इन्होंने 2030 और अभी और चार साल में क्या क्या मतलब व्हाट आर दी माइलस्टोन्स दी आर हैविंग
सर एज एंड व्हेन वो हर जैसे हमारा प्रोग्रेस रहेगा तो अनाउंस करेंगे बट एक ब्रॉड माइलस्टोन ये है कि जो 12 लाख टन का हमने स्लाइड नंबर 9 पे दिखाया वो तीन फेजेस में एग्जीक्यूट होंगे पहला फेज जो हमने ऑलरेडी अनाउंस किया 930 करोड़ का वो हमारा 3,60,000 टन का इंस्टॉल कैपेसिटी रहेगा स्टेनलेस स्टील कॉयल का और सिमिलरली दो अलग फेज टू और फेज थ्री आएंगे बट प्रोडक्ट कॉम्पोजिशन अभी तक फाइनल हुए नहीं है उसके
जो हमने जो हमने टारगेट किया है हमारा कि कार्बन स्टील पाइप एंड ट्यूब 10 लाख टन करेंगे अगले 4 सालों में, मतलब हमारी कैपेसिटी हम डेवलप कर लेंगे, और 3 लाख टन के आसपास हम कोटेड स्टील में करेंगे, 7 लाख टन के आसपास स्टेनलेस स्टील में करेंगे।
अच्छा अच्छा सर, तो अभी ये इतना ये जो हम जर्नी में है एक्सपेंशन की, तो हमारा ये एबिटा का टर्न इम्प्रूव होगा या सस्टेन रहेगा और कैसे रहेगा, मतलब बिकॉज हमारा जो एबिटा मार्जिन है वो काफी बेहतर आया इस साल, तो हाउ विल इट इम्पैक्ट आवर एबिटा पर टन?
सर लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे जैसे Q2 और Q3 में हमारा एबिटा मार्जिन थोड़ा सा एक लोअर लेवल पे था, क्योंकि ये डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस एंड द एचआर कॉइल प्राइसेस, एचआर कॉइल के प्राइस पे आज एचआर कॉइल एचआर पाइप का रेट डिसाइड होता है। इतनी बड़ी आज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो कि एचआर कॉइल से ही कन्वर्ट करती हैं पाइप्स को, तो वो एचआर कॉइल के बेस पे ही पाइप का रेट डिसाइड होता है। तो आज आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं दिसंबर फर्स्ट वीक की, तो इट्स अराउंड प्राइसेस आर ऑफ एचआर कॉइल 45,000 और नाउ इट इज 56,000 रुपीज पर टन। तो 20% का जो एक मूव आया है, तो वो हमारे भी गेन, हमको भी गेन हुआ उसका प्राइसिंग में। ऑफकोर्स कुछ रॉ मटेरियल प्राइसिंग भी बढ़ी है, स्टील के ओवरऑल प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन अब जो एचआर कॉइल वापस उस प्राइसेस में जाएगा ऐसा कोई भी ऐसा नहीं दिखता है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि 3 साल जो एक वो सेफगार्ड ड्यूटी का भी एक बैकअप है हमारे पास में, मतलब गवर्नमेंट जो अगर चाइना से वो डंपिंग भी होती है तो। और उसके अलावा आज पहले एक अबंडेंस था, जो सब लोगों की कैपेसिटी एक साथ मूव हुई थी मार्केट में और कंजम्पशन नहीं था। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि मार्केट में फ्लैट प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन बढ़ गए हैं, तो उसके कारण जो है अब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ एचआर कॉइल इज एट पार, तो अब वो बहुत नीचे नहीं जाएगा अब एचआर कॉइल का, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारा जो एबिटा पर टन भी है वो भी एक इसी के आसपास, जो हमको लगता है कि हम इजी अचीवेबल कर पाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करूं तो 7,000 से 8,000 के आसपास हम अचीव कर पाएंगे बहुत आराम से।
अच्छा, और सर हमारे मार्जिन भी स्टेडी रहेंगे 13% के आसपास?
सर वो भी बस वो मतलब एक आप 10 से 12 का फिगर ले सकते हो कि 10 बहुत फिर मिनिमम हो गया, अगर कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो, और अच्छा करेंगे तो 12 साढ़े 12 के आसपास भी कर सकते हैं।
अच्छा, और सर ये थोड़ा हमारे रेवेन्यूज ये जो अभी जो भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके लिए हम हाउ आर वी मैनेजिंग के वी हैव इनफ मार्केट इनफ डिमांड टू, मतलब वो हमने ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है जो भी मतलब
मार्केट करेंगे हम लोग, तो हमने पूरी मार्केट का हमने समझा हुआ है कि स्टील कंजम्पशन जो है इंडिया में वो हर सेक्टर में बहुत होना है। अब जैसे अगर आप देखेंगे सोलर सेक्टर में, जहाँ की आज हम 135 गीगावाट किया है, 500 गीगावाट करना है हमको, तो 4 मिलियन टन की लगभग इसमें स्टील कंज्यूम होना है। वेयर हाउसिंग जो हमारे पास आज 25 करोड़ स्क्वायर फीट है, जिसको हमको 100 करोड़ स्क्वायर फीट का टारगेट है 2030 तक, इसमें 5 मिलियन टन इसमें स्टील लगना है। ऐसे रेलवेज में लगभग 1300 टर्मिनल्स को रीडेवलपमेंट होना है, 400 न्यू भारत वंदे मातरम ट्रेन चलनी है, मेट्रो का जो हमारा आज है 1,150 किलोमीटर से 3,000 किलोमीटर होना है, 400 नए एयरपोर्ट बनने हैं, तो स्टील पूरे इंडिया में बहुत लगना है। और आज जो स्टील की इंजीनियरिंग है वो कन्वर्टेड इनटू द होलो सेक्शन पाइप्स, होलो सेक्शन इन फ्लैट प्रोडक्ट्स, तो वो जो वेयर हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट आएगी वो पाइप एंड ट्यूब में आएगी 60-70% मान सकते हो आप। सोलर की भी जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं कोटेड प्रोडक्ट, उसमें 60-70% हमारे पास में रिक्वायरमेंट आएगी। रेलवेज में भी अब होलो सेक्शन लगने लग गया, तो वहां पे भी जो स्टेनलेस स्टील लगेगा ट्रेन्स में, जो पाइपिंग होती है ट्रेन्स के अंदर में वो, और जो आपका टर्मिनल भी जो नए बनेंगे उसमें भी आप जितनी रेलिंग्स लगनी है सारी स्टेनलेस स्टील लगने लगी है, और जो रूफिंग है वो पाइप एंड ट्यूब पे कन्वर्ट हो गई है। मेट्रोस में भी जितनी आप अंदर की जो भी डेकोरेशन या रेलिंग देखेंगे सारी स्टेनलेस स्टील पे आ गई है, और जो ट्रैक के साइड की रेलिंग्स है वो पूरी पाइप एंड ट्यूब में है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंजम्पशन बहुत होना है इंडिया में अभी, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो इंडिया में बहुत रिक्वायरमेंट है और बन रहा है, गवर्नमेंट का उसपे वो भी है एक इनिशिएटिव भी है कि हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना भी है। कल ही मोदी जी ने अनाउंस किया है कि सभी लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो।
हाँ जी
जी,
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था,
सॉरी टू इंटरप्ट, रिक्वेस्ट टू प्लीज रीजॉइन द क्वेश्चन क्यू इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन।
एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक क्वेश्चन लास्ट सर, ये वेस्ट एशिया वॉर का जो है क्या इम्पैक्ट रहा अपने क्वार्टर पर, और आगे जाके अगर ये सुलझता नहीं है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है?
सर वी आर टोटली मतलब मोस्टली डिपेंडिंग ऑन आर इन हाउस पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आर कैप्टिव पावर प्लांट्स फर्स्ट. सेकेंडली वी हैव कमीशन्ड आर एलपीजी एलएनजी बेस्ड पाइपलाइन आर एनर्जी. वी हैव स्विच्ड आर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम एलपीजी टू एलएनजी इन जनवरी 2026. सो जस्ट बिफोर आवर वॉर वी हैव सक्सेसफुली कमीशन्ड आर वी हैव कन्वर्टेड आर लाइन फ्रॉम एलपीजी टू पीएनजी एंड छत्तीसगढ़ very few people are using PNG pipe gas and also the city distribution is yet to be started. So as per the MOU with the GAIL and state of Chhattisgarh, so the pipe the PNG supply is uninterruptedly being provided to Chhattisgarh based manufacturer. So
right.
We have not impacted with the shortage of PNG or LNG. So we in this worst war time or in the baddest of the time, आर प्लांट वर अप एंड रनिंग 24/7.
दूसरा और है सर, जो बाहर बड़े प्लांट्स हैं आप वो सब कुकिंग कोल पे मतलब उनका कुंका कंजम्पशन कुकिंग कोल का है जो इंपोर्ट होता है, जिसका प्राइसिंग भी अभी काफी इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री डोमेस्टिक कोल्स पे डिपेंडेंट है. तो डोमेस्टिक कोल बहुत अबंडेंस में अवेलेबल है और बहुत अच्छे प्राइस पे ही हमको रेगुलर माल मिलता है. तो इम्पोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं है, सो देट कोई वार का हमको इम्पैक्ट नहीं हुआ. और बट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा एडवर्सली जो प्राइसिंग का इम्पैक्ट, प्राइसिंग पे जो इम्पैक्ट आया उसका हमें बेनिफिट हुआ है.
हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विशेष से आंसर दिए सर, थैंक यू.
बहुत धन्यवाद सर आपका भी.
थैंक यू. लेडीज एंड जेंटलमैन, टू आस्क अ क्वेश्चन यू मे प्रेस स्टार एंड वन, दैट इज स्टार एंड वन टू जॉइन द क्वेश्चन क्यू. Our next question is from the line of Shashi Ranjan from Anandan Capital. Please go ahead.
Thank you for the opportunity, sir, and congratulations to the entire team. In slide number 38, I see that the inventory has jumped up significantly to the tune of 40%, although we have increased the number of distributors by say 10% and the dealer by say around say 40%. So in spite of having these increase in dealers and distributors, we see that the inventories are up by 40%. May I know the reason for that, sir?
It is with the in line with the revenue. अगर आप revenue देखेंगे तो 1500 करोड़ से लगभग 2400 करोड़ हुआ है. तो 40% revenue increase हुआ है, 40% के आसपास ही हमारा stock भी increase हुआ है. Last year जो है हमने जो दो नए product थे हमारे stainless steel और coated product, ये just चालू ही किए थे तो उसमें उतना उनका रॉ मटेरियल का या फिनिश प्रोडक्ट का या वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक उतना हमारे पास में पूरी कैपेसिटी ही हम उसकी कम यूटिलाइज कर पा रहे थे. अभी पूरी फुली कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं तो इन लाइन विद द रेवेन्यू ही मान सकते हो उसको कि 40% लगभग हमारा रेवेन्यू जंप हुआ है, तो 40% हमारा स्टॉक भी बढ़ा है.
थैंक यू सर. एंड अगेन फ्रॉम स्लाइड नंबर 38 आई सी इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इन द कॉन्करेंट asset. Can you just throw some light on that 100 crore of investment that is there? Slide number 38, sir.
Yes. So, we have excess funds at the March year end. So, we just have parked the excess 100 crores in the liquid fund, which is highly insignificant risk involved. And since it is invested in mutual funds, so we have shown this in current investments. And that converted into cash at any time.
It is a non-current investment, if I'm not wrong. Non-current. Okay, it's current investment. Now the last question, yes, it's current investment. Now the last question, if I may extract, is that we are completing the entire capex by say Q4/7, right? So what percentage of PLI 1.2, the actual PLI 1.2 will be able to expand that we are going to have?
Shashi, sorry to interrupt, but your line is not very clear. Members of the management, I hope you have the question.
Clearly audible to us.
Okay.
I repeat the question again. That most capex will be by Q4 27, and with the greenfield expansion ending by that timeline, what how much we will be able to extract from PLI 1-2, which the government is offering right now, which ends in 2021?
So PLI scheme that for the thin gauge cold roll coil that we have received, we can avail it till 2030 or 2031 or so, but it will be capped at around 200 crore rupees or the installed capacity tonnage production. So either of the in due condition, so let's say 2027 Q4 we will be commissioning, so we will have 3 to 4 financial year to avail this incentive from the Government of India. In terms of in the range of 13 to 15%, depend on the which thickness and which grade of steel that we are going to manufacture from the plant.
Yeah, thank you very much, sir, for all the elaborate answer. Congratulations to your entire team and all the best wishes. Thank you. I'll come back in queue.
Thank you. Participants who wish to ask questions may press star and one. That is star and one to ask a question. Our next question is from the line of Chandresh Malpani with Niveshaay. Please go ahead.
Yeah. Thank you so much, sir, for the opportunity. Our congratulations. Good set of numbers. Sir, my first question was, as you have mentioned on MS side, what the situation was and why this EBITDA per ton expansion is. So, sir, stainless side, what is happening? Because in one of your answers, you mentioned that 300 series ka bhi realization has reached around 2 lakh to 2 lakh 10 thousand, while in Q4 it was about 1 lakh 80 to 1 lakh 90 thousand. So वहाँ पे क्या situation है sir? And साथ ही में last quarter में जैसे import window का एक बताया था, तो वहाँ पे क्या update है?
सर अभी जैसे हम लोग अभी अगर आप देखेंगे कि हमारे last quarter दो quarter में 10% के आसपास ही हमने 300 series के production किए हैं. और जो अभी अगर हम इसी प्रोडक्शन लाइन पे देखेंगे तो 10 to 20% का ही हमारा प्लान है, क्योंकि पीएनटी सेक्शन हम डेवलप कर रहे हैं मजबूती से कि मार्केट में जो हमारे एमओयूज अभी लगभग 10 लोगों से साथ हम को ब्रांडिंग पार्टनरशिप पे अपनी पाइप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, जिसमें लगभग 1200 टन के आसपास ही हमारी क्वांटिटी अचीव हो गई जो एमओयू होल्डर्स हमसे ले रहे हैं. और इस साल का टारगेट है कि लगभग 2500 टन जो है वो हम पर मंथ का हमारे एमवी होल्डर के थ्रू को ब्रांडिंग में हमारी संभव के साथ में पाइप मैन्युफैक्चरिंग कराएं. और जब हम केसदा शुरू करेंगे तो हमें कुछ एचआर क्वाइल स्टेनलेस स्टील एचआर क्वाइल भी सेल करनी है और साथ के साथ सीआर भी करना है और यूटेंसिल सेक्शन में भी जाना है और भी कई सारे जो हमारे अभी अनफोल्डेड सेक्टर्स हैं उनमें भी हमको जाना है 400 सीरीज में भी. तो उस टाइम पे हम 300 एंड 400 का अगर रेशियो देखेंगे तो वो इम्प्रूव होगा. 30 to 40% अगर हो सकता है वो 300 होगा और 10 to 20% जो है 400 सीरीज होगा. लेकिन अभी हम 200 पे ही हमें मार्जिन भी अच्छे हैं और हमारी मार्केट भी हमको अभी इसमें थोड़ा कैप्चर करनी है मजबूती से. तो अभी तो लगभग 10-20% के आसपास ही हम 300 सीरीज करेंगे.
ओके, एंड ऑन द इंपोर्ट विंडो वहाँ पे क्या अभी अपडेट है?
इम्पोर्ट विंडो में जैसे अभी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करके डेट दिया है, इसके पहले हमेशा जब भी उन्होंने मतलब जो नॉन बीआई स्टैंडर्ड्स के अगर अलाउ किया है तो थ्री मंथ सिक्स मंथ ऐसा टाइमलाइन दी है. लेकिन इस बार स्पेसिफिक उन्होंने 10 अक्टूबर की टाइमलाइन दी है कि 10 अक्टूबर के बाद जो कोई भी बिल ऑफ लैंडिंग है वो इंडिया में अलाउ नहीं होगी. तो ये बहुत लास्ट टाइमलाइन आई थिंक दी गई है कि जो इम्पोर्ट से जुड़े सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, जो लोग इम्पोर्ट करके डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर में. लेकिन जो अगर आप देखेंगे कि जो प्राइस का इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया में वो एज वेल एज चाइना में भी हुआ है, कि वॉर क्राइसिस का जो एनर्जी का अगर आप देखते हैं क्राइसिस है तो वो इंडिया के साथ साथ चाइना में भी है. और जो निकल के या जो एलॉय स्टील के प्राइसेस बढ़े हैं लाइक निकल क्रोम एंड कॉपर, तो वो चाहे इंडिया के हमारी कॉस्टिंग बढ़ी है साथ साथ चाइना की कॉस्टिंग भी बढ़ी है. और प्रोडक्शन कॉस्ट कोई हमारी चाइना से ज्यादा नहीं है, तो बहुत ज्यादा डंपिंग हो जाना या बहुत कम रेट में माल आ जाना ये पॉसिबल नहीं है. तो प्राइसिंग यही रहेगी, माल वहां से आएगा क्योंकि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है इंडिया में अभी कि जो इंडिया का कंजम्पशन उसको हम पूरा कर पाए. तो वो कुछ ना कुछ तो चाइना से इम्पोर्ट होगा ही. अभी नॉन बीआईसी स्टैंडर्ड का हो रहा है, मान लीजिए फिर गवर्नमेंट जो बीआईसी स्टैंडर्ड से लोगों को लाइसेंस देगी तो आगे बीआईसी स्टैंडर्ड के माल आएंगे. लेकिन हमारे लिए वो प्राइसिंग को लेके कोई हमारे ऊपर में कोई वो नहीं है, तो
प्राइसिंग प्रेशर डोमेस्टिक मार्केट में हमारे को नहीं
है। नहीं है।
ओके ओके सर। एंड सर जैसे टीएफटी का आपने जो अनाउंस किया है ईआरडब्ल्यू साइट, उसमें बेसिकली हम लोग का फिर जब ये कैपेसिटी ऑन लाइव होता है तो कितना हम इनहाउस कॉइल से पाइप बनाएंगे और आउटसाइड का क्या रेशियो रहेगा और अभी करंटली क्या है?
अभी करंटली लगभग हम 20,000 टन पर मंथ का अगर पाइप प्रोडक्शन करते हैं तो 15,000 से 16,000 टन हम इनहाउस कॉइल से कर रहे हैं और 4,000 to 5,000 जो है आउटसाइड एचआर कॉइल से कर रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जब हम इसको पर मंथ 30,000 to 35,000 टन के आसपास हम जब इसको लेके जाएंगे 30,000 to 35,000 टन, तो 20,000 से 25,000 हम करेंगे हमारी इनहाउस कॉइल से और 5,000 से 10,000 टन करेंगे हम आउटसाइड एचआर कॉइल से, क्योंकि जो बड़े साइजेस हमको बनाने हैं वो जो अबाउट द 7 inches वो बाहर की कॉइल से ही बना पाएंगे। तो हमारे साइज की अवेलेबिलिटी भी जो थोड़ा सा कि हमको एक कहीं ना कहीं आज एक रहता है कि हम तुरंत अवेलेबल नहीं करा पाते हैं कुछ बड़े साइजेस को या कुछ स्पेशल साइजेस को, तो डीएफटी लगने का हम तुरंत अवेलेबल करा पाएंगे, हमारी डिलीवरी की थोड़ी सी और भी फास्ट हो जाएगी, हमसे थोड़ा सा उसमें हम उसके मार्जिन भी हमारे बढ़ेंगे ऐसा लगता है हमें उसके बाद।
ओके got it sir. And sir last question sir, working capital cycle with like we have maintained it very well and 16-17 days pe hum log maintain kar rahe even when you know hum log stainless steel which is a B2B business mein kafi grow kar rahe, so how do you see this days going forward when you know 60% hum log stainless steel se hamara business ka contribution aayega revenue?
तो अगर मेरा अभी का प्रोडक्ट मिक्स देखो तो 17 टू जो डेज है वो 2026 में हमने अचीव किया है, वो विद लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इम्प्रूवमेंट्स इन आर प्लानिंग वो अचीव हुआ है। 2027 भी यही रेंज पे रहेगा हमारा एक्सपेक्टेशन है, बट 2028 जैसे ही मेरा स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्शन लाइव होगा 2028 में, तो उस टाइम पे 25 से 30 डेज का मेरा साइकिल हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील एडवांस रॉ मटेरियल का साइकिल होता है और जो मटेरियल मार्केट में उतारते हैं वो थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड ज्यादा रहता है उसका विज़ाविज़ आर एमएस पाइप एंड करेंटली जो कोटेड प्रोडक्ट्स हैं उसके मुकाबले। तो जैसे प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा 25 टू 30 डेज मेरा एक्सपेक्टेड स्टेबिलाइज वर्किंग साइकिल डेज रहेगा।
और जो अभी करेंटली है ये भी लगभग 17 से 25 के बीच में थोड़ा सा एक वेरिएशन आ सकता है, तो प्रयास तो हम करेंगे कि 17 के नीचे लेके जाए।
ओके ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू चंद्रेश।
थैंक यू सर।
Thank you. Participants, to ask a question, you may press star and one. That is star and one to ask a question, ladies and gentlemen. Our next question is from the line of Himanshu Shivhare with MB Investment. Please go ahead.
Hi, good evening. My question is, what is the percentage of inventory of raw material that you have that is bought on the old prices as of now?
एक्चुअली इसमें ना जैसे हमारा बेसिक रॉ मटेरियल ना सर आयरन और एंड कोल है, जिसमें कोई बहुत प्राइसिंग का बहुत फ्लक्चुएशन अभी है नहीं। अगर आप देखेंगे कि अभी एनएमडीसी ने 250 रुपीज प्राइस इंक्रीज किया आफ्टर जस्ट 1 month और इसके पहले भी उन्होंने लगभग 200 रुपीज का प्राइस इंक्रीज किया था, तो कोई बहुत ज्यादा प्राइसिंग का इम्पैक्ट नहीं है जितना फिनिश प्रोडक्ट के प्राइस में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वर्क इन प्रोग्रेस तो हमारा सारा कॉस्ट पे ही डिफाइन करते हैं हम लोग, और हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कोल एंड आयरन और है। कोल का भी प्राइस जो है वो अगर आप देखेंगे तो 5 to 10% के आसपास ही इंक्रीज हुआ है, तो कोई ओल्ड लेवल का स्टॉक और न्यू लेवल के स्टॉक में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है।
एंड हिमांशु, इफ यू सी आवर फाइनेंशियल्स, अराउंड 60% इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल एंड 40% आर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गोल्ड स्टॉक इन ट्रेड और यू कैन से स्टोर्स बैलेंस पास। सो 60% जो रॉ मटेरियल के फॉर्म में इन्वेंट्री में वो हमारा अभी के लिए स्टेबिलाइज पास, सो देर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन ओल्ड रेट एंड न्यू रेट बिकॉज द पैरिटी इज देयर, देर इज नो मेजर गैप इन द प्राइसिंग।
और हमको स्टॉक लॉस या स्टॉक प्रॉफिट का चाहिए इसलिए नहीं आता क्योंकि हम तो सारा हमारा जो WIP है वी आर कैलकुलेटिंग इन द कॉस्ट बेसिस, कि हमारी जो कॉस्ट पे हम उसको उसको हम वैल्यूएशन करते हैं उसकी। और आयरन और कोल है वो तो रियल टाइम हम जो हमने अचीव जो रिसीव किया उसी पे हम उसको उसी पे स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं।
अच्छा, तो हमारे मतलब अगर फिनिश प्रोडक्ट्स के प्राइसेस स्टेबल रहे तो हमारे मार्जिन मेंटेन रहेंगे फ्यूचर में?
यस यस।
Thank you, sir. Thank you so much.
Thank you very much.
Thank you so much, Vijay.
Thank you. Ladies and gentlemen, you are requested to please restrict yourselves to two questions only. If you have any further questions, you may rejoin the queue. To rejoin the queue, you may press star and one, ladies and gentlemen. That is star and one to join the question queue. Our next question is from the line of Randhir Singh with Randhir HUF. Please go ahead.
Hello.
You may proceed, sir. You are audible.
Sir, a minute. Thanks for the opportunity, sir. मैं सर कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ सिमलेस 5 के रिगार्डिंग सर उसपे क्या अपडेट है सर अभी
सर उसका अप्रूवल्स अभी हम लोगों ने मतलब एक्सपेक्टेड है और पीएलआई के सिमलेस 5 के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारा पीएलआई स्कीम के तहत सिमलेस का जो लॉन्ग प्रोडक्ट है वो हमारा अप्रूव्ड हो गया है PLI 1.2 scheme there, but in terms of project planning and everything, once full approval is there in our hand, we will be announcing that and there, sir. Before that announcement, doing announcement will not be prudent, sir.
That production, sir, kab se expect
kya sakte hain? It depends on the approval from the government authority, sir. Once we will have all the approvals in place for start the construction work, then we will be announcing the exact timeline for the production line, sir.
सर ये जो भी एमओयू साइन हुआ है पीएलआई स्कीम के थ्रू उससे सर मार्जिन में सुधार हो सकता है
पीएलआई स्कीम डिजाइन हुआ है सर रेवेन्यू का कुछ परसेंटेज इंसेंटिव के तहत तो अगर एक सिचुएशन ऐसा रहा कि प्राइसिंग वॉर हो सकता है तो वो जो पीएलआई स्कीम है हमारे लिए एक सेफ्टी नेट के तहत काम करेगा सर बट हाँ पीएलआई के साथ अगर सेम प्राइस पॉइंट पर सेम कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम काम करेंगे तो मार्जिन का इम्प्रूवमेंट पीएलआई स्कीम के साथ होगा सर जो बाकी इंडस्ट्री में भी बाकी प्लेयर्स भी अचीव कर रहे हैं लेट से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हायर मार्जिन दिखा रहे हैं बिकॉज ऑफ द पीएलआई वी विल ऑल्सो बी हैविंग दैट बेनिफिट सर
मैंने थोड़ा ओपनिंग रिमार्क्स आपका और मिस किया है और ये अर्लियर जो पार्टिसिपेंट थे उनका भी मिस किया है तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए रिपीटेटिव हो सकता है ये जो खेसरा ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन जो है सर ये मतलब Q4 FY27 तक जैसा कि आप बता रहे थे तो अभी भी एक्सपेक्टेड वही एक टाइमलाइन है सर या इसमें और डिले होने का संभावना है
सचमुच अभी तक कोई डिले एक्सपेक्टेड नहीं है अभी भी टाइमलाइन इंटैक्ट है सर with the God of grace, which will be achieving by Q4 2027, sir.
Thank you, sir.
Thank you. Participants, you may press star and one to ask a question. That's star and one to ask a question, ladies and gentlemen. Our next question is from the line of Avnish Kumar from Ritu Finn. Please go ahead.
Good evening, sir.
Good evening.
Sir, first of all, congratulations on brilliant set of numbers. Sambhav has delivered exactly as per lines. Very good numbers, sir. Extremely proud to be a shareholder of Sambhav Steel. Sir, my questions were like, what kind of product lines are we planning to add in upcoming 2-3 years? Second, do we also have plans to add some value-added materials like color-coated sheets, the roofing sheets I'm talking about? And third, sir, what is the difference between our SS coil and Jindal Stainless SS coil?
So you have asked three questions, Avnish ji. First is, what are the three or two, four products, whatever we are talking about, what will be that? तो एक फिलोसॉफी क्लियर है कि जो मेरा करंट इंटीग्रेटेड सेटअप है या जो मेरा करंट स्किल सेट है इन एंड अराउंड एक कम कैपेक्स में और वो स्किल सेट के आजू बाजू ही प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे सो जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो सप्लीमेंटल और कॉम्प्लीमेंट्री टू माय एग्जिस्टिंग इंटीग्रेटेड सेटअप रहेगा फर्स्ट सो देर इज नो स्पेसिफिक टू बी कोटेड एज ऑन डेट इन दिस कॉल इटसेल्फ सेकेंडली जो स्टेनलेस स्टील आप बोल रहे हैं कि जिंदल से क्या अलग है सर स्टेनलेस स्टील होता है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर मेरा BIS स्टैंडर्ड का और जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो अगर मैं मैच कर रहा हूँ तो दोनों का सेम ही है सर।
नहीं नहीं, क्वालिटी इसे साइज मिक्स की बात कर रहा हूँ, साइज मिक्स क्या हमारे बिल्कुल बराबर है?
करेंटली सर हम लोग नैरो विड्थ रोलिंग मिल के थ्रू और कोल्ड रोलिंग मिल के थ्रू हम लोग स्टेनलेस स्टील का 200 और 300 सीरीज कर रहे हैं, जबकि फुल विड्थ स्टेनलेस स्टील जिंदल स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूस करता है, उनका विड्थ साइजेस अप टू मतलब अराउंड 2 मीटर टू 2.5 मीटर तक भी जाता है आई बिलीव, तो उनका साइजेस इन टर्म्स ऑफ विड्थ इज मच लार्जर देन व्हाट वी आर करंटली प्रोड्यूसिंग, तो हमारा यूज केस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इफ वी टॉक अबाउट द विड्थ सेंस। और थर्ड, कलर कोटेड शीट और जो आपने बोला वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, तो करेंटली अभी प्लान नहीं है, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें लगा कि मार्केट में हम एज अ प्लेयर, सिग्निफिकेंट प्लेयर हमारे ही इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज हम अचीव कर पाएंगे और मार्केट को पेनिट्रेट कर पाएंगे तो डेफिनेटली वो भी एक टेबल पे है सर, बट अभी नहीं है सर।
Okay, and sir, just एक query और, what is the aspiration that we have in terms of revenue and net profit margin in coming 5 years? क्योंकि सर आपका product mix थोड़ा different है, I can't compare you with APL Apollo because you have stainless steel also, I can't compare you with Jindal Stainless because you have MS also. So, what kind of revenues and net profit margin we are looking at in next 5 years? Sir, what is the aspiration?
सर हमारा जो 3 product line है currently, जिसको ही हमने अभी guidance दिया कि 10 lakh ton ऑफ एमएस कार्बन स्टील का पाइप्स एंड ट्यूब्स करेंगे, 3 लाख टन का इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ कोटेड शीट करेंगे और कोटेड प्रोडक्ट का करेंगे और 7 लाख टन का स्टेनलेस स्टील का कैपेसिटी अचीव करेंगे, तो अगर 2030 का हम बात करें तो सर अराउंड 60% का मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा। और रेवेन्यू प्रोफाइल वाइज नहीं बोल पाऊंगा, बट अगर मेरा EBITDA लेवल पे देखूंगा तो अगर मैं 60% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करता हूँ तो अराउंड मेरा 8,000 से 9,000 रुपया पर टन का मेरा EBITDA प्रोफाइल रहना चाहिए, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिक्स दैट वी हैव अनाउंस्ड। मार्जिन वाइज अगर बोलूं तो परसेंटेज वाइज हमारा बिजनेस यूजुअली एक मीडियन मार्जिन 12% का होता है, प्लस माइनस 2% के ब्रैकेट में ऑन द वर्स्ट के सिनेरियो एंड द बेस्ट के सिनेरियो ऑपरेट करता है, तो ये हमारा 12 प्लस माइनस 2% के मार्जिन प्रोफाइल हमारा हमेशा रहेगा सर।
तो सर मैं क्या 10% नेट प्रॉफिट मार्जिन बेस के बेयर के सिनेरियो में कर सकता हूँ सर?
सर बियर के सिनेरियो नेट प्रॉफिट मार्जिन इज पैट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो मेरे हिसाब से पैट का अगर हमारा मार्जिन प्रोफाइल करेंगे तो 5% प्लस माइनस 1% का हमारा पैट का हमारा ऑपरेटिंग बैंडविड्थ है, तो 5% एक आप नेट प्रॉफिट का मार्जिन प्लस माइनस 1% वर्स्ट के सिनेरियो, फोर बेस्ट के सिनेरियो जो हमारा Q4 हमने डिस्प्ले किया है वो है 6% सर।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द क्लैरिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लान सर।
Thank you,
Avneesh.
Thank you. Thank you. Participants may press star and one to ask a question. That is star and one to join the queue. Our next question is from the line of Romil Savalia from Shamin LLP. Please go ahead.
Yeah, hello, sir. Thank you for the opportunity to ask a question. Sir, a question on a capital allocation side. So, sir, jab bhi hum capital
The current participant seems to have dropped from the queue. We will proceed to the next question, which is from the line of Mehul Panjwani from 40 Cents. Please go ahead.
Sir, thank you so much for the follow-up. Sir, मुझे question था, आपने जो expansions हमने announce किए हैं, तो सबसे important और significant expansion कौन सा रहेगा? हम जो 1.2 मेगा सॉरी मेट्रिक टन का MMTPA ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे हैं और पावर कैप्टिव पावर प्लांट्स और स्टेनलेस स्टील बॉटल मेकिंग और ERW एक्सपेंशन DFT रूट के थ्रू, तो कौन सा वाला सबसे सिग्निफिकेंट है हमारे गाइडलाइंस के लिए, हमारे गाइडेंस के लिए?
सर सिग्निफिकेंट तो हर एक कैपेक्स है हमारे हिसाब से, कोई भी कैपेक्स को हम सीरियसली ले रहे हैं, हर रिस्क को मिटिगेट करते हुए ही कैपेक्स और टाइमलाइन को अचीव करने के हिसाब से ही मैनेजमेंट एवरी डे दे आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट लाइन, बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखेंगे कि वॉल्यूम टर्म में और मॉनिटरी टर्म में इन प्रेजेंट टू द हिस्ट्री ऑफ आवर कंपनी अगर देखेंगे तो केजदा प्लांट जो 1.2 मिलियन टन का फिनिश प्रोडक्ट कैपेसिटी है वो हमारे लिए एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है और इसको हम बहुत सीरियसली लेके ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रेस्ट जो कैपेक्स जो अनाउंस्ड है, जो डी बॉटल नेकिंग हो गया या ब्राउन फील्ड एक्सपांशन, वो इन अ ऑनगोइंग प्रोसेस on a very auto mode wo ho raha hai, but Kesa is where the maximum focus area is there.
Right. Aur sir, Kesa ke kya timelines hai ye expansion?
Page 1 ki jo humne announce kiya 360,000 ton ka stainless steel coil ka, wo by Q4 FY 2027 we will be able to commission that, jiska benefit hume FY 2028 mein capacity utilization ka dekhne ko milega sir.
Acha, first phase ka.
Second phase or third phase ka, once my utilization of phase 1 main agar ek baar dekh lunga aur mera jo abhi capex hai uska ek mere ko flavor aa jayega, uske baad phase 2 aur phase 3 ka product mix aur uska timeline hum announce kar payenge sir.
Acha. Aur sir, abhi is baar hi hamara volume growth 37% hai, to ye ek baar hi expansion ho gaya to hamara matlab we will be almost doubling our capacity?
Yes, sir.
Okay, and that we'll see the results in first quarter of FY 2028.
So FY 2028 it will not be linear, क्योंकि capacity ramp up होने में कोई भी नया plant का it will take time. So अगर आप मेरे को बोलेंगे कि capacity utilization for phase 1 of Kesra unit we will be achieving the peak at Q3 Q4. Q1 28 में तो पूरा नहीं देखने को मिलेगा, but एवरेज आउट करूंगा तो मेरा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन विल बी अराउंड नॉट मोर देन 40% फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ कमिशनिंग.
अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट सर.
थैंक यू. Ladies and gentlemen, you are requested to please restrict yourselves to 2 questions only. You may rejoin the queue if you have any further questions. You may press star and 1 to join the question queue. That is star and 1. Our next question is from the line of Isha from VT Capital. Please go ahead.
Good evening, sir. So I had one question regarding how are we seeing quarter 1? Is it like in tandem with quarter 4, given the prices have remained strong and the demand itself is quite strong? Obviously, in Q2, we would be seeing a slowdown due to monsoon. But are we really expecting that great monsoon this time, which we saw last year?
So, agar main public report aur El Nino ka jo publications ho rahe hain, us hisab se jaunga, to is bar below normal month. Logon ka in the circle itself, if people are talking about, but last year was phenomenally a bad year in terms of monsoon, kyunki kafi prolonged monsoon tha, let's say 4 to 5 months ka monsoon tha. Monsoon decide hi November, December mein hua tha. तो ये बार अगर एल नीनो इफेक्ट है और बिलो नॉर्मल मॉनसून है, तो वी बिलीव कि फॉर अस एज ए स्टील इंडस्ट्री थोड़ा सा डिमांड अपटिक हो सकता है. अगर मॉनसून नॉर्मल भी होता है तो डिमांड जैसे साइक्लिक होता है Q2 और Q3 वो वैसे ही रहेगा. मैम,
एंड सर, व्हाट एबिटडा फॉर टन आर वी एक्सपेक्टिंग इन Q1? इज इट इन लाइन विद व्हाट वी सॉ इन Q4? Or is there any difference that we can see because of the pricing scenario change?
So we would like to give you an guidance of 7,500 to 8,000 rupees per ton for Q1 FY27.
Okay. And sir, this 150,000 ton capacity for ERW that we have announced, when do we expect this to come online?
By Q4 FY27, ma'am.
Okay, it will start. And what would be the utilization in 28? Would it be like greater than 60-70%?
It will be around that range only that you have quoted, ma'am.
Okay. That's it from my side. Thank you, sir.
Thank you, ma'am.
Thank you.
Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask a question. That is star and 1 to ask a question. Our next question is from the line of Vineet Thakur from Plus 91 Asset Management Company. Please go ahead.
Hi, sir. Thank you for the opportunity again. Sir, I just want to know the SS value chain that we have currently. How does it work? Because I was trying to figure out, we have around 58,000 tons of capacity, which is going to 116 as of this weekend. But we have said 169,000 tons of sales in SS. How is the working, sir, is possible in that? I'm just trying to understand.
Hello, sir. Am I audible?
So after this brownfield expansion, जो हम कर चुके हैं, वो stainless steel का हमारा rated capacity will be 116,000 ton, but अगर peak production अगर हम बोलेंगे, तो 6,000 ton per month का peak production हम achieve कर सकते हैं। तो currently हमारा अगर run तो 4,000 के आसपास का average था last year का stainless steel का production का, अब वो ये साल 2027 में around 5,500 to 6,000 होगा, depend on मैं क्या thickness का material ज़्यादा produce कर रहा हूँ।
तो सर अज्यूमिंग कि सेलेबल प्रोडक्ट अपना से सीआर कॉइल्स है, तो हम जो सेलेबल प्रोडक्ट रहेगा हमेशा वो सीआर कॉइल्स ही रहेगा, नॉट एचआर कॉइल्स, और वी कैन स्विच इधर और राइट व्हेनेवर वी वांट वांट
एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज अब सीआर कॉइल ही हम लोग एंड प्रोडक्ट सेल करेंगे।
ओके तो सर जो हम प्रोडक्शन बोलते हैं ऑफ एसएस व्हिच इंक्लूड्स स्लैब एज वेल, 169,000 का सर पूरा वर्किंग समझाएंगे आप मुझे कैसे होता है मतलब, और वो 48,000 में ट्रांसलेट कैसे होता है मतलब, इफ यू कैन गिव मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट।
श्योर, सो प्रोडक्शन नंबर इंक्लूड्स द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एज वेल। लेट्स से 169 में हमने प्रोड्यूस किया एसएस का स्लैब्स, लगभग 60,000 के एसएस का स्लैब्स हमने प्रोड्यूस किया, स्लैब्स को कन्वर्ट किया इनटू एचआर कॉइल, सो अराउंड 59,000 उसका एचआर कॉइल बना, एंड देन वी कन्वर्टेड इनटू सीआर कॉइल, सो इफ वी ऐड ऑल थ्री देन वी रीच अ प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑफ अराउंड 169,000, बट अगेन द सेलेबल आउट ऑफ दीज थ्री इज ओनली सीआर कॉइल, एंड हेंस द सेल क्वांटिटी इज ओनली यू कैन से 49,000 टन, बिकॉज द स्लैब्स एंड द एचआर कॉइल गॉट कैप्टिवली कंज्यूम्ड, राइट?
करेक्ट,
या so that is why you will see a difference between the production number and the sales number, because at two levels we are captively consuming everything and not selling in the market.
Correct. So sir, CR, HR to CR ka ratio or conversion ratio?
HR to CR ka?
हाँ.
HR to CR ka conversion ratio I think around 98% recovery होती है, so 2% would be the rolling loss you can say.
So sir, जब हम MS में भी बोलते हैं, तो उसमें हम sponge iron भी बेचते हैं वहाँ कि सिर्फ slabs और HR and CR ही count होता है intermediate में?
नहीं, अभी SS के value chain में slabs, HR ही count होता है intermediate में, because we have a three step process. So we manufacture the liquid metal of stainless, convert it into slabs, so this is the first step. Then slabs get converted into HR coil. This is the second process, and the third is where we do the cold rolling of HR coil. So it's a three-step process.
And sir, MS के लिए भी same ही रहेगा, right?
So MS में एक step add हो जाता है, because before the melting we also manufacture sponge iron.
Correct sir.
So एक step वहाँ पे add है carbon steel में, and in case of coated steel there is an additional process जहाँ पे हम कोल्ड रोलिंग भी करते हैं, सो एचआर के बाद फर्स्ट वी डू दी कोल्ड रोलिंग, एंड देन कोल्ड रोलिंग के बाद वी डू दी गैल्वेनाइजिंग ऑफ दैट सीआर कॉइल, एंड दैट गैल्वेनाइज्ड कॉइल इज कन्वर्टेड इनटू पाइप्स।
तो सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सो जो भी हम सीआर प्रोड्यूस करेंगे वो पूरा यूज होगा इन गैल्वेनाइज्ड, राइट? इन जीपी होगा अगर बनाएंगे तो
5%, बिकॉज कुछ सीआर कॉइल वी डू कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू पाइप्स आल्सो, व्हिच वी कॉल इट सीआरएफएच पाइप,
so 40-45% would be going to galvanized, right?
No, not 40-45%,
90-95% 90-95% will go to galvanized, and then whatever jo bhi rahega hum CRFS dal denge. Okay sir, thank you so much.
Thank you. Ladies and gentlemen, we will take that as our last question for today. I would now like to hand the conference over to the management for closing comments.
Thank you everyone for participating in this call. We hope that we have addressed all your queries satisfactorily during the session. However, if there are any remaining questions, please feel free to reach out to our investor relationship at Go India Envy Advisor. Once again, we extend our gratitude to all the participants for joining us today. We look forward to interacting with you again in the coming quarters. Thank you. Have a great day ahead.
Thank you. On behalf of Monarch Networth Capital Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining us. You may now disconnect your lines.